हरे कृष्णा। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आविर्भाव तिथि महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, अतः आज की कक्षा में हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का एक महत्वपूर्ण योगदान विश्व को वैष्णव सिद्धांत स्थापित करने के विषय में जो था उसके ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला एसी भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं और उनके गुरु और पिता श्री भक्तिनाथ ठाकुर, जिन्होंने 19वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं जो उस समय धूमिल हो चुकी थी उनको पुनर्जागृत करने का अभियान छेड़ा भक्तिनाथ ठाकुर ने, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध शिक्षाएं जो समय के प्रभाव से धूमिल हो गई थी उनको पुनर्जागृत किया। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी बताते हैं कि समय के प्रभाव से भगवद गीता का ज्ञान लुप्त हो गया, इसलिए अर्जुन मैं तुम्हें यह ज्ञान दोबारा दे रहा हूँ। तो कुछ उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु लगभग 500 वर्ष पूर्व अवतरित हुए और उन्होंने कलयुग का युग धर्म दिया और अति उत्तम शुद्ध भक्ति सभी को सिखाई। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद अगले कुछ 200-300 वर्षों के अंदर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं लगभग लुप्त हो चुकी थी। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में केंद्रीय भाग था कि शास्त्र का जो मर्म है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति, वो शास्त्रों का मर्म है, इसको स्थापित करना। शास्त्रों में मनुष्य समाज के लिए अलग अलग मार्ग दिए गए हैं आध्यात्मिक प्रगति के लिए, जो मुख्यतया तीन स्तर पर हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। क्योंकि मनुष्य समाज में सभी लोग आध्यात्मिक दृष्टि से एक ही स्थिति में नहीं होते, उनकी चेतना के अलग अलग स्तर होते हैं, इसीलिए शास्त्रों में भगवान के द्वारा ये तीन मार्ग बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। जो आध्यात्मिक चेतना के निम्नतम स्तर पर हैं, अर्थात जिनकी चेतना इस भौतिक जगत को अभी भी भोग करने की ही है, उनके लिए कर्म मार्ग प्रशस्त है, जिसके अंतर्गत वर्णाश्रम धर्म के द्वारा समाज के सभी लोगों को धीरे धीरे ये संसार को भोग करने की वृत्ति से वो बाहर निकल पाए, इस प्रकार से ये वर्णाश्रम धर्म गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि जो भी इस भौतिक जगत के हमारे कार्य हैं हम उसको हरि सेवा में लगाएं, हरि को अर्पित करें, और इसके माध्यम से वो जो इस जगत को भोगने की इच्छा है वो शुद्ध हो और धीरे धीरे हम भक्ति की तरफ आगे बढ़ सकें, जिसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की सेवा केवल उनकी संतुष्टि के लिए। तो इसलिए ये वर्णाश्रम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस उद्देश्य से शास्त्रों में दिया गया है। भगवान भगवद्गीता में भी बताते हैं कि ये वर्णाश्रम उनके द्वारा स्थापित किया गया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागिशः। लेकिन ये जो शुद्ध रूप है वर्णाश्रम का, ये समय के रहते दूषित हो गया था। चैतन्य महाप्रभु जिस समय अवतरित हुए उस समय में भी, अब इस वर्णाश्रम को आध्यात्मिक प्रगति का एक पद्धति न मान करके सामान्यतया जो वैदिक शास्त्रों को अवलंबन करने वाले थे उन्होंने इसको एक जातिवाद बना दिया। अर्थात जन्म से किसी व्यक्ति का वर्ण सुनिश्चित होगा केवल जन्म से, और यानी कि देह से संबंधित हो गया वो वर्ण। यद्यपि आरंभिक या मूल वर्णाश्रम धर्म का हेतु है सभी जीवों को, सभी मनुष्यों को देहात्म बुद्धि से निकाल करके इस चेतना में लाना कि हम सभी शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और भगवान के नित्य दास हैं, ये मूल हेतु है वर्णाश्रम का। लेकिन धीरे धीरे ये वर्णाश्रम की समझ दूषित हो गई और सामान्यतया वैदिक अवलंबन करने वाले लोगों ने इसे जाति प्रथा बना करके जन्म से इसको स्थापित कर दिया कि जिसका जो जन्म है उसके अनुसार उसका उसका वर्ण निश्चित हो गया। यानी कि जो ब्राह्मण परिवार में कुल में जिसका जन्म है वो ब्राह्मण हुआ, और इस प्रकार से जो क्षत्रिय वर्ण में परिवार में जन्म हुआ वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि। और ये गुण के आधार पर नहीं केवल जन्म के आधार पर स्थापित हुआ, और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से इस भौतिक जगत के अंदर जो भी हमारी भौतिक इच्छाएं उनको पूर्ण करने के ही उद्देश्य से वर्णाश्रम पालन किया जाने लगा। मुख्य रूप से जो ब्राह्मण हैं, जो अन्य तीन वर्ण जिनको उच्च वर्ण माना जाता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसमें भी सबसे उत्तम वर्ण ब्राह्मण वर्ण क्यों उत्तम माना जाता है? स्वाभाविक रूप से जो ओरिजिनल जो मूल वैदिक संस्कृति है उसमें ब्राह्मण कुल को श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो सर्वाधिक धार्मिक नियमों का पालन करते हैं जिसके कारण वो सत्वगुण में होते हैं। और इसीलिए जो ब्राह्मण हैं उनका उत्तरदायित्व होता है कि वो अन्य वर्णों को अपने उदाहरण से और अपनी शिक्षाओं से उनका उत्थान करें और उनको भी धीरे धीरे प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ाएं और इस प्रकार से सभी के सभी लोग हरि भक्ति में प्रगति करें। लेकिन ये विकृत वर्णाश्रम दृष्टिकोण के अंतर्गत ब्राह्मण समुदाय ने, ब्राह्मण वर्ग ने अपने इस जन्म से ब्राह्मण होने को अन्य वर्ग के लोगों का शोषण करने का एक मार्ग बना लिया। जब वर्ण जातिगत हो गया अर्थात जन्म से हो गया, तो फिर अभी जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए उनको आवश्यक नहीं था कि उनका चरित्र भी ब्राह्मण के समान हो, क्योंकि जिसका भी जन्म है ब्राह्मण परिवार में वो ब्राह्मण है। तो फिर चरित्र के ऊपर जोर नहीं रह गया। इसलिए परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे जब से जातिवाद वर्णाश्रम जातिवाद के रूप में माने जाने लगा तब से गुणों में ह्रास होने लगा। ब्राह्मण केवल जन्म से ब्राह्मण, लेकिन उनके गुण और चरित्र से निकृष्ट व्यवहार उनका हो गया और हेतु केवल अन्य वर्ग के लोगों का शोषण करना हो गया। तो ये तथाकथित हिंदू समाज, हिंदू समुदाय स्मार्ट विचार, ये इस धारणा को दिखाने वाला है। और आज भी हम जो तथाकथित अपने को हिंदू मानते हैं, इसी विचारधारा से आज तक भी पीड़ित हैं, जिसमें कि जन्म से यानी कि जाति से हर एक व्यक्ति का वर्ग निर्धारित होता है, उसके गुणों का कोई आधार नहीं लिया जाता। और इसका एक दूसरा परिणाम यह है कि किसी भी व्यक्ति को शुद्ध होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म शुद्ध परिवार में हुआ है वो चाहे कितना भी कुछ भी शुद्ध कार्य करे, लेकिन वो क्योंकि जन्म से शुद्ध है इसलिए उसका स्थान शुद्ध ही रहेगा। ये विचार हमारी मूल वैदिक संस्कृति और मूल शास्त्रों के विरुद्ध है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मूल वैदिक शिक्षाओं को स्थापित करा, उन्होंने कहा नीच जाति नाहे कृष्ण भजने अजोग्य, षट कुल विप्र नाहे भजने रजोग्य, यही भजे सही बड़ा अभक्त हीन छार, कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। अर्थात नीच जाति का होना वो कृष्ण भजन में अयोग्यता नहीं है, और उसी प्रकार से उच्च कुल में जन्म लेना हरि भजन के लिए योग्यता नहीं है। वास्तव में जो भगवान का भजन करता है वो महान है, और जो भी अभक्त है, जो भगवान का भक्त नहीं है, वो हीन है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में जाति कुल विचार नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं शास्त्रोचित हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में जैसे बताते हैं, माम ही पार्थ व्यपाशित्य ये पी स्यु पाप योनयः स्त्रियो शूद्रा सता वैश्या ते भी यान्ति पराम गतिम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई नीच जन्म भी क्यों ना हो, स्त्री वैश्य शूद्र, लेकिन वे सभी मेरी शरण में आ सकते हैं। भगवान की शरण में जाने के लिए जाति कुल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शास्त्रों में वर्णन है कि किसी व्यक्ति का जन्म जो है वो उसके पूर्व कर्म फल के अनुसार होता है। तो इसलिए यदि किसी का जन्म निम्न परिवार में हुआ है, निम्न कुल में हुआ है, तो ये दिखाता है कि पूर्व जन्म में पाप में कृत्य उस व्यक्ति ने किए हैं, जिसकी वजह से वो निम्न कुल में जन्म हुआ है। लेकिन ये निम्न कुल में जन्म होने पर भी अगर वो व्यक्ति भगवान की शरणागति लेता है तो न केवल उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, बल्कि वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर कोई मेरा शरणागत होता है तो मैं उसे सभी पाप कर्मों से मुक्त करता हूं। तो सामान्य रूप से वैदिक शास्त्रों में दो विधियां हैं अंततः भगवान तक पहुंचने की, एक है क्रमिक विधि और एक है शरणागति, डायरेक्ट विधि, सीधी विधि। क्रमिक विधि में धीरे धीरे पहले व्यक्ति वर्णाश्रम के नियमों का पालन करके तमोगुण रजोगुण के प्रभाव से उत्तरोत्तर सतोगुण में पहुंचता है, यानी कि कई कई जन्मों में शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण बनता है, तदुपरांत वो ज्ञानी बनता है, कर्म से फिर ज्ञान में आता है, यानी कि इस भौतिक जगत की आसक्ति से हटता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, और फिर अंततः भक्तों का संग प्राप्त करके भक्त बनता है। इस तरह से कर्म ज्ञान और भक्ति में धीरे धीरे प्रवाहित होता है। इस पद्धति को पालन करने के लिए बहुत सटीकता से वर्णाश्रम का पालन होना चाहिए, धर्म के सभी नियमों का बड़ी कड़ाई से पालन होना चाहिए, तब धीरे धीरे ही प्रगति होगी। और अंततः सोपान है शरणागति, श्री कृष्ण की शरणागति, वो अंतिम सोपान है। लेकिन वर्तमान कलयुग में ये जो क्रमिक विकास का मार्ग है ये अवरुद्ध है, क्योंकि वर्तमान समय में धर्म का सटीकता से पालन करना प्राय असंभव है। वर्णाश्रम के सभी नियमों का पालन करना प्राय असंभव है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपात्रता। इस कलयुग के अंदर सभी दुर्भाग्यपूर्ण हैं, सबकी मंद है, मति मंद है, उनकी कोई रुचि ही नहीं है आध्यात्मिक प्रगति में। और मंद सुमंद मतया, और बहुत ही ठगे जाने वाले लोग उनको भ्रमित करते हैं, आयु बहुत कम है, इत्यादि अनेक दोष हैं। इसलिए वर्तमान कलयुग में ये क्रमिक विकास का मार्ग आध्यात्मिक प्रगति का अवरुद्ध है। इसीलिए वर्तमान समय में शास्त्रों के अनुसार एकमात्र मार्ग जो आध्यात्मिक प्रगति का है वो है, यदि कोई व्यक्ति भक्तों के संपर्क में आकर के अपनी दैन्यता को स्वीकार करता है कि अनेक अनेक पापों के कारण इस कलयुग में हम आए हैं और अभी कलयुग के प्रभाव से धर्म इत्यादि करने के लिए अक्षम हैं, उनको सही प्रकार से करने के लिए अक्षम हैं, और साधु संघ में हम ये समझ रहे हैं कि ये भौतिक जगत में भोग करना हमारा कार्य नहीं है, हम भोगता नहीं हैं, श्री कृष्ण भोगता हैं, हम उनके दास हैं, लेकिन हम ये क्रमिक मार्ग में जाने के लिए अक्षम हैं क्योंकि धर्म पालन करने के लिए वर्तमान समय में योग्यता ही नहीं है। तो ऐसे विनम्र भाव से अपने को हताश, अपने को हेल्पलेस समझते हुए यदि कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के माध्यम से भगवान की शरणागति लेता है, तो भगवान की शरणागति के प्रभाव से वो पाप कर्मों से युक्त होने पर भी, धर्म का सटीकता से पालन ना कर पाने पर भी वो शुद्ध भक्त बन सकता है। ये मार्ग शास्त्रों में पांचरात्रि की शास्त्र पांचरात्रों में वर्णित है और ये पांचरात्रि की विधि कहलाती है। इस विधि के अंदर कोई व्यक्ति का जन्म कैसा भी हो, यानी उसके पूर्व कर्म के फल कैसे भी रहे हों, लेकिन यदि वो भगवान को शरणागत होता है तो वो शुद्ध हो सकता है। और इसके अनेक उदाहरण हम शास्त्रों में देखते हैं, जैसे कि मृगारी बहुत पापी था, एक व्याध था, हंटर, और जानवरों को मार रहा था, अधमरा कर रहा था। तो नारद मुनि जब वहाँ उसको देखते हैं तो उसको नारद मुनि के संग के प्रभाव से वो भगवान को शरणागत होता है, और इतना घिनौना और इतना क्रूर व्यक्ति भी नारद मुनि के मार्गदर्शन में भक्ति करने से, शरणागति के बल पर वो परम स्तर पर, शुद्ध भक्ति पर पहुंच जाता है। तो वर्तमान समय में यही मार्ग है, और जो क्रमिक मार्ग है वो अवरुद्ध है, क्योंकि कलौ शुद्र संभवः। कलयुग में हम देख रहे हैं कि जो वैदिक क्रमिक मार्ग है वो अवरुद्ध है, क्योंकि गर्भदान संस्कार इत्यादि संस्कार अभी होने बंद हो गए हैं, धर्म का जो पाया है वो सभी खत्म हो चुके हैं। संस्कार, सबसे पहला संस्कार गर्भदान संस्कार होता है। शास्त्र में वर्णन है कि एक जो ब्राह्मण है उसके घर के अंदर एक ऐसी आत्मा का जन्म होता है जो ब्राह्मण के लिए प्रशिक्षित होने के लिए योग्य है, लेकिन वो तभी जब उस कुल में ब्रह्मा से लेकर के ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा के पुत्र, जब ब्रह्मा से लेकर के आज तक उस कुल में जो संतान आएगी वो ब्राह्मणत्व के लिए प्रशिक्षित होने के लिए योग्य होगी, लेकिन वर्तमान समय में ये सभी संस्कार पालन नहीं किए जाते हैं। इसलिए ये जो जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण के लिए प्रशिक्षित होने के तैयार हो ऐसा अभी नहीं रह गया है। इसीलिए कलयुग के लिए ऐसे समय में जब भी वैदिक ये जो क्रमिक मार्ग है अवरुद्ध हो जाता है, उस समय पंचरात्र मार्ग एकमात्र मार्ग रह जाता है प्रगति का। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए तब उस समय का हिंदू समाज वो अभी भी वो केवल ये वास्तविक वर्णाश्रम का दुरुपयोग करके उसको जातिवाद बना दिया था और शास्त्रों का निचोड़ उन्होंने केवल ये ले लिया था कि शास्त्र केवल हैं अंततः पुण्य कर्म करो और स्वर्ग जाओ। जो रिचुअल्स हैं जो वैदिक वर्णाश्रम के अंदर जो कर्मकांड अलग अलग कार्मिक विधि हैं उसका हेतु उन्होंने केवल स्वर्ग जाना मान लिया था। भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में भी इसको बताते हैं क्योंकि ये हमेशा से रहा है ये मिस इंटरप्रिटेशन शास्त्रों की ये गलत समझ हमेशा से रहती आई है। भगवान भगवद्गीता में बताते हैं वेदवाद रतः पार्थ न अन्यत अस्तित्ववादिनः कि जो वेदवाद रता हैं जो तथाकथित वेदों के अवलंबी हैं वो केवल स्वर्ग जाने को ही वेदों का अंतिम उद्देश्य मानते हैं। ये वेदों की वास्तविक समझ नहीं है। वेदों की वास्तविक समझ स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में बताते हैं वेदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्य। सभी वेदों का अंतिम सार है श्री कृष्ण को यथारूप जानना और भगवद्गीता का सार है मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना। लेकिन हमेशा से क्योंकि इस भौतिक जगत में हम सभी भोग करने की वृत्ति से पीड़ित हैं इसलिए हम शास्त्रों को भी जब पढ़ते हैं तो भोग वृत्ति से उसको आच्छादित कर देते हैं और वास्तव में जो वेदों का मूल उद्देश्य है कृष्ण भक्ति तक पहुंचना वो आच्छादित करके उस वेदों को भी हम अपने ही इंद्रिय भोग का एक माध्यम बना लेते हैं, केवल स्वर्ग जाने का ही एक माध्यम बना लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के समय में भी इसी प्रकार से था। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कर्मकांड या ज्ञानकांड से भक्ति को अलग किया और इस प्रकार से उन्होंने सिखाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं हालांकि वो ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने शूद्र या कोई भी जन्म से कैसा भी क्यों ना हो उनको अपने समुदाय में भक्ति सेवा में उनको स्वीकार किया। वाराणसी के अंदर चैतन्य महाप्रभु जब गए तो वहाँ पर जो स्मार्ट ब्राह्मण थे जो इस प्रकार के दूषित वर्णाश्रम मेंटालिटी विचारधारा के थे तो उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु को देखा कि वो निम्न जाति के लोगों के साथ में कीर्तन कर रहे हैं भगवान का इनाम ले रहे हैं और निम्न जाति के साथ लोगों के साथ में घुल मिल रहे हैं तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की भर्त्सना की। प्रकाशानंद सरस्वती ऐसे ही एक ब्राह्मण और सन्यासी थे और उनके अनुयायियों ने उनकी भर्त्सना की तो तब चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे अनुयायी थे तपन मिश्रा उन्होंने उनसे यह सहन नहीं हो रहा था तो उन्होंने कि इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की भर्त्सना हो रही है तो उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती। तो वहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में चैतन्य महाप्रभु ने ये स्थापित किया कि शास्त्रों का वेदांत का सही अर्थ वो नहीं समझ रहे हैं। तो शंकराचार्य उन्होंने एक विशेष हेतु से वेदांत व्यासदेव द्वारा दिया गया वेदांत उसका तोड़ मरोड़ करके उसका अर्थ निकाला था क्योंकि बुद्ध जो विचारधारा थी जो नास्तिकता थी जिसपे शास्त्र का अवलंबन नहीं था उसको हटाना था। इसीलिए उन्होंने एक बुद्ध धर्म से बुद्ध दर्शन से मिलती जुलती एक फिलॉसफी वेदांत के नाम पर रखी। ये शंकराचार्य जी जो कि शिव जी हैं उनको भगवान के आदेश पर ऐसा करना पड़ा था। तो शंकराचार्य के अनुयायी जो तात्कालिक उस समय के लिए जो तोड़ मरोड़ा गया था वेदांत को, उसको आगे तक भी पालन करते आ रहे थे, आज तक भी करते आ रहे हैं। और उनके विचार, उन्होंने शास्त्रों के निचोड़ को बना लिया था, निराकार ब्रह्म में लीन होना यही परम लक्ष्य है। जबकि शास्त्रों का मर्म है कि भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना ये परम लक्ष्य है, ना कि निराकार ब्रह्म में लीन होना। तो जो स्मार्ट विचार से पीड़ित हिंदू समाज था, उसमें समझा जाता था, दो दूषित विचारधाराओं से पीड़ित था समाज, एक जैमिनी की कर्म मीमांसा और दूसरी शंकराचार्य का मायावाद। जैमिनी कर्म मीमांसा के अनुसार अलग अलग शास्त्रों के जो रिचुअल्स हैं, कर्मकांड हैं, उसको करना ही परम लक्ष्य है, और उसको करने से हमें स्वर्ग प्राप्त होगा, हम कोई हमें दुख नहीं आएगा, हम बिल्कुल पुण्य करेंगे, पाप नहीं करेंगे, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और देवी देवता, भगवान कृष्ण, राम, ये सब भी कर्म के अंदर आते हैं, ये भी अपने कर्म को ही भोगते हैं, और कोई भी देवी देवता इत्यादि, उनकी अपनी कोई शक्ति नहीं है कर्म सिद्धांत के विरुद्ध जाने की, ये कर्म मीमांसा की विचारधारा है। हालांकि मायावाद की विचारधारा के अंदर स्वर्ग जाना जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि निराकार ब्रह्म में लीन होना लक्ष्य है, लेकिन शंकराचार्य के अनुयायी यानी कि मायावाद, वो भी गृहस्थों को आरंभिक स्तर पर कर्मकांड करने के लिए ही बोलता है। इस प्रकार से जो दूषित विचारधारा है शास्त्रों की, उसके अंतर्गत पंचोपासना बताई गई है, जिसके अंदर पांच डेटीज की उपासना करनी है भौतिक भोग करने के लिए, सूर्य की उपासना करनी है धर्म प्राप्ति के लिए, गणेश की उपासना करनी है अर्थ प्राप्ति के लिए, दुर्गा की उपासना करनी है काम इच्छाओं की पूर्ति के लिए, शिव की उपासना करनी है मोक्ष के लिए। इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार जो पुरुषार्थ हैं, उसके लिए चार देवताओं की पूजा करनी है, चार देवी देवताओं की पूजा करनी है, और पांचवे विष्णु, जो शास्त्रों के अनुसार कोई भी उपासना विष्णु उपासना के बिना पूरी नहीं होती है, इस उद्देश्य से विष्णु की उपासना करनी है, जिससे हम सभी प्रकार के शोक और डर से मुक्त हो पाए। ये स्मार्त दूषित विचार शास्त्रों का इस प्रकार से पंचोपासना को रखता है, जिसमें विष्णु भी एक देवता है। तो इस स्मार्त विचार के अंतर्गत जो विष्णु उपासना है, वो शास्त्रों में वर्णित विष्णु उपासना, भक्ति के अंतर्गत जो विष्णु उपासना है, जो वास्तविक विष्णु उपासना है, उससे बिल्कुल भिन्न है। स्मार्त विचार के अंदर जो विष्णु उपासना है, वो विष्णु है हमारे इंद्रिय भोग के एक माध्यम, हमारे कर्म कांड के एक माध्यम, हमें स्वर्ग पहुंचाने के लिए एक माध्यम। लेकिन शुद्ध भक्ति जो वेदों का सार है, उसके अंतर्गत विष्णु हमारे सेव्य भगवान हैं, उनकी सेवा, उनकी उपासना केवल उनकी संतुष्टि के लिए करनी है, ना कि स्वर्ग जाने के लिए पुण्य कर्म के लिए। तो स्मार्त विचार में विष्णु उपासना एक और पुण्य कर्म है, लेकिन शुद्ध भक्ति विचार में शुद्ध भक्ति पाप और पुण्य दोनों से परे है, क्योंकि वहां पर इस भौतिक जगत में भोग नहीं करना है, स्वर्ग नहीं जाना है, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, लेकिन केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही जीवन समर्पित करना, ये जीवन का लक्ष्य है। तो चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने ये सिद्धांत स्थापित किया वैष्णविज्म, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद फिर दोबारा से धीरे धीरे ये जो स्मार्त विचार यानी कि मायावाद और कर्म मीमांसा, ये वैष्णव समुदाय पे भी दोबारा से हावी हो गई, उसके अंदर घुस गई। तो इसके परिणाम स्वरूप अगले 300-400 सालों के बाद तक ऐसी स्थिति हो गई थी कि जो वैष्णव थे, जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी अपने को बताते थे, वो लोग भी जातिवाद में लिप्त हो गए। जैसे कि जातिगत गोस्वामी परिवार और गोस्वामी वंश उत्पन्न हुए, चैतन्य महाप्रभु के जो षट गोस्वामी थे और उनके पार्षद थे जैसे नित्यानंद प्रभु, तो उनके जो पुत्र हुए या उनसे जो दीक्षित हुए उनके आधार पर ये वंश और परिवार बनाए गए। और ऐसा हो गया कि जो गोस्वामी एक परिवार बन गया और उस परिवार में जो जन्म लेगा वो गोस्वामी बन जाएगा। चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी गोस्वामी बने थे वो जन्म से गोस्वामी नहीं बने थे, वो अपने चरित्र से गोस्वामी बने थे। गोस्वामी का अर्थ होता है जो अपने इंद्रियों पर पूर्ण रूप से संयम करे और जो भगवान का विशुद्ध भक्त हो उसको गोस्वामी कहते हैं, स्वामी कहते हैं। तो षड गोस्वामी वृंदावन के जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, वो इसलिए गोस्वामी कहे गए क्योंकि उनके अंदर ये गुण थे। लेकिन धीरे धीरे, हालांकि शुरुआत ऐसे ही हुई, लेकिन धीरे धीरे जो गोस्वामियों का परिवार में जिसका भी जन्म हो उसको गोस्वामी मान लिया गया और इस प्रकार से गोस्वामी एक कास्ट बन गई, एक जाति बन गई गोस्वामी। और गुरु होना ये भी जातिगत हो गया, जो गुरु वंश में आएंगे उन्हीं को अधिकार होगा गुरु बनने का। जिस प्रकार से ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण बनता है, उसी परिवार से गुरु परिवार में जन्म लेने से कोई गुरु बनता है। तो आप देखिए, हमेशा से जो हमारी जो टेंडेंसी है इस जगत को भोग करने की, इसलिए हम हर चीज में, हर चीज को अपने इंद्रिय भोग में परिणित कर लेते हैं। गुरु बनने, गुरु होने को भी, ब्राह्मण होने को भी, सब चीज को हम अपने इंद्रिय भोग में नियोजित कर देते हैं। शास्त्र को अपने इंद्रिय भोग में नियोजित कर लेते हैं, भगवान के शुद्ध नाम को अपने इंद्रिय भोग में नियोजित कर लेते हैं, और इस तरह से शास्त्रों का जो मर्म है वो हट करके विभ्रंश आता है, दूषित हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया था कि जात गोस्वामी करैक्टर में बहुत निम्न स्तर पर पहुंच गए थे। बंगाल के अंदर जहां पर चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन विशेष रूप से प्रसारित था, तो वहां के जात गोस्वामी मछली खाना भी शुरू कर दिए थे। ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है, हुआ है, गोस्वामी है लेकिन मछली खाते हैं, और सभाओं में अपने शिष्यों को खुद मछली खा के प्रसाद उनको देते हैं, तो तुम भी खाओ मछली। यानी कि एक पेशा बन गया, गोस्वामी होना एक पेशा बन गया, ब्राह्मण होना एक पेशा बन गया। क्योंकि जो सभी निम्न वर्ग के लोग हैं, अगर उनको स्थापित किया जाएगा, देखो ब्राह्मण और गोस्वामी ये लोग ही, इनके ऊपर, इनके पास ही अधिकार है केवल तुम्हें शुद्ध करने का। तुम कोई गलती करोगे, तुमको प्रायश्चित कराने का, सब कर्मकांड कराना, वो हमारा अधिकार है केवल, उससे फिर उनका पैसा मिलता है। इस तरह से ये एक पेशा बन जाता है, पुजारी बनना एक पेशा बन जाता है, है ना, गुरु बनना एक पेशा बन जाता है, ये गुरुगिरी कहलाती है। जैसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं, मेडिकल प्रोफेशन है, वकील एक प्रोफेशन है, ऐसे ही पुजारी, गुरु, ये सब एक प्रोफेशन बन जाते हैं। ये है पीड़ित समाज, ये वास्तविक वैदिक ज्ञान नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद में चैतन्य महाप्रभु के ही अनुयायियों में फिर से ये प्रदूषण अंदर घुस गया। तो जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज और भक्तिविनोद ठाकुर उनसे पहले आए, उस समय के वैष्णव समाज की स्थिति थी कि वो अनेक प्रकार के घोर पाप कर्म में लिप्त होते थे। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का गलत प्रतिपादित, उनके सिद्धांत को गलत रूप से प्रतिपादित करके, और स्मार्ट विचार से पीड़ित थे, सहजिया विचार से पीड़ित थे, ऐसी अनेक कुरीतियाँ थीं उस समय के वैष्णव समाज में, जिसकी वजह से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएँ पूरी लुप्त हो चुकी थी लगभग। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज का एक विशेष प्राधान्य जो हमारे पूरे वैदिक संस्कृति में और उसके अनुलंबन करने वालों के लिए है और पूरे संसार के लिए है, कि उन्होंने पुनर रूप से शुद्ध दैव वर्णाश्रम को स्थापित करके शास्त्रों की वास्तविक शिक्षाओं को स्थापित किया। यानी जो ओरिजिनल वर्णाश्रम सिस्टम है उसको उन्होंने दैव वर्णाश्रम नाम दिया, क्योंकि वो वर्णाश्रम सिस्टम, वो वर्णाश्रम सामाजिक प्रक्रिया है शुद्ध भक्ति को स्थापित करने के लिए। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, अतः कुंभेर द्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशया स्वामिश्र धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम। ये जो वर्णाश्रम पद्धति है वो समाज को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करने के लिए जिससे कि हरि का तोषण हो, हरि की संतुष्टि के लिए और सब लोग हरि संतुष्टि में आगे बढ़ सकें, इसके लिए वर्णाश्रम है। हाँ, तो दैव वर्णाश्रम स्थापित, पुनः रूप से स्थापित किया भक्तिनाथ सरस्वती महाराज ने, और इसी का कारण है कि आज बंगाल के अंदर उस प्रांत में सभी लोग इस बात को आसानी से स्वीकार करते हैं कि जन्म से वर्ग वर्ण निश्चित नहीं होता है। ये बहुतायत में आज सामान्य रूप से माना जाने लगा है कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण बनता है और भगवत भक्ति कोई भी वर्ण का व्यक्ति कर सकता है, ये सामान्य रूप से आज माना जाता है। लेकिन इसको, इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को अपनी प्राण भी दांव पर लगाने पड़े थे। ये आसान नहीं था बंगाल में इस चीज को स्थापित करना, और आज भी ये सब जगह तो स्थापित नहीं है, पर फिर भी काफ़ी हद तक ये जो प्रचंड अटैचमेंट था जाति से वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन श्री भक्तिदान सरस्वती महाराज ने इसमें एक विशेष रोल प्ले किया है। तो भक्तिदान सरस्वती महाराज ने चाहे कोई भी जाति में जन्म लिया हो, व्यक्ति क्यों ना हो, उसको उन्होंने पंचरात्रि की दीक्षा दी, उनको उन्होंने जनेऊ दिया जिसका बहुत विकराट रूप से विरोध किया गया, क्योंकि जनेऊ ये उपनयन संस्कार ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन वर्ग के लोगों के लिए है, और जातिगत प्रथा जहां पर होती है तो जाति यानी जन्म से जो ब्राह्मण हैं वही केवल, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उन्हीं के अंदर केवल उपनयन संस्कार हो सकता है, और उपनयन संस्कार और उसके बाद ये जनेऊ वही केवल धारण कर सकते हैं। लेकिन भक्तिदान सरस्वती महाराज ने शास्त्रों की वास्तविक शिक्षाओं को स्थापित करने के लिए शूद्र कुल में जन्म लिए ऐसे लोग जो भगवान को शरणागत हो रहे हैं और जो सभी प्रकार के पाप में कृत्यों से मुक्त हो रहे हैं, उनको उन्होंने जनेऊ उपनयन संस्कार उनको दिया पंचरात्रि की दीक्षा देकर के। तो एक है वैदिकी दीक्षा जो मैंने आपको बताया, क्रमिक मार्ग जिसमें कि विशेष रूप से वर्णाश्रम पालन करके धीरे धीरे विकास होता है और अंत में शरणागति आती है। लेकिन एक दूसरा मार्ग है पंचरात्रि की, जिसमें आरंभ होता है शरणागति से, इसलिए वो क्रमिक विकास पर निर्भर नहीं है। तो ये शास्त्रों का जो आगम शास्त्र इसको बोलते हैं, पंचरात्र बोलते हैं, उसके आधार पर जब ये क्रमिक मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो पंचरात्रि की दीक्षा से शोधन होना चाहिए, क्योंकि वैदिक मार्ग तो अभी अवरुद्ध है, उससे शोधन कैसे होगा। आज तथाकथित कोई व्यक्ति अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बोलते हैं लेकिन वहाँ गर्भदान संस्कार नहीं है, उन कुलों में कोई संस्कार पालन नहीं हो रहे हैं, उनके कोई करैक्टर चरित्र नहीं है, फिर भी यदि हम इस बात पर टिके रहे कि नहीं क्योंकि हमारा जन्म इस परिवार में हुआ है तो हम इसलिए ब्राह्मण हैं, तो फिर उससे कोई शोधन नहीं होने वाला, वो केवल दिखावा है। तो इस चीज को भक्तिदान सरस्वती महाराज ने स्थापित करने के लिए बहुत उनको विरोध सहन करना पड़ा। आज अभी एक नाटिका देखेंगे जिसमें इसी विषय को दर्शाया जाएगा। यहाँ तक कि उनके प्राण लेने के लिए भी प्रयास किया गया था। तो उसी प्रकार से जो जातिगत गोस्वामी थे उनकी भी उन्होंने अवहेलना की कि जब तक कोई व्यक्ति के अंदर गुण नहीं है तब तक वो व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। किब विप्र के बनासी शूद्र के नए यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होए। ये चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी कि गुरु कौन हो सकता है, किब विप्र किब न्यासी, चाहे कोई जन्म से ब्राह्मण हो या किब विप्र किब न्यासी, चाहे कोई सन्यासी भी क्यों ना हो, लेकिन यही कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण के तत्व को जानता है वही गुरु हो सकता है। दुर्भाग्य से आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कृष्ण तत्व को नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी अपने को गुरु कहलवाते हैं। तो भक्तिदान सरस्वती महाराज ने चैतन्य महाप्रभु की इन शिक्षाओं को स्थापित किया कि जातिगत रूप से कोई गुरु नहीं बनता है। आज भी हम देखते हैं ऐसे संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय हैं आज भी ऐसे, जहाँ पर कि जाति के आधार पर ही गुरु होते हैं। लेकिन इस्कॉन के अंदर जाति के अनुसार, जन्म के अनुसार कोई गुरु नहीं होते हैं। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति के आधार पर मान्यता नहीं है। हर व्यक्ति को भगवत भक्ति करने का अधिकार है, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है भगवान की भक्ति करना। इसलिए आप देखेंगे कि इस्कॉन टेम्पल्स के अंदर जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। हम सब लोग साथ में बैठ करके भोजन कृष्ण प्रसाद लेते हैं। जो स्मार्ट विचार है उसके अंदर ब्राह्मण कभी भी शूद्र के साथ बैठ करके खाना नहीं खा सकता है। लेकिन अभी ये चीज स्थापित हो रही है। आयरनी ये है कि जन्म से जो ब्राह्मण हैं वो शूद्र के साथ बैठ करके भोजन भी नहीं लेते थे, लेकिन अभी मॉडर्नाइजेशन के कारण वो ऐसी ऐसी कंपनियों में जाते हैं और वहाँ पर सब लोगों के साथ मिक्स होकर के मांस भी खाते हैं और वाइन भी पीते हैं, लेकिन फिर भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। तो ये एक विशेष योगदान भक्तिदान सरस्वती महाराज का और परंपरा का है कि जाति के आधार पर भक्ति निर्धारित नहीं होती है। उसका अधिकार भक्ति से उसका कोई संबंध नहीं है। आज अलग प्रकार की जातियां उत्पन्न हो गई हैं। अभी धीरे धीरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वो तो वैसे भी धूमिल हो गया है, क्योंकि अभी सब ग्लोबलाइजेशन हो गया है, सब इधर उधर सब मिक्स होते हैं और सब कोई नियमों का पालन तो वैसे भी नहीं होता। लेकिन अभी आजकल नई जातियां उत्पन्न हुई हैं, एजुकेटेड वर्ग, रिच, जो धनवान हैं, एजुकेटेड हैं। तो हमें ये भी समझना होगा आज के परिप्रेक्ष्य में कि भक्ति एजुकेशन के ऊपर भी निर्भर नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा एजुकेटेड हैं वो भक्ति कर सकते हैं, जो अमीर हैं वो भक्ति कर सकते हैं, नहीं। भक्ति का आज संबंध आत्मा से है। हर आत्मा भगवान की शरण ले सकती है। तो इस तरह से जो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, तो उसमें ये शास्त्रों की शुद्ध शिक्षाओं को बताया जा रहा है, प्रवाहित किया जा रहा है कि शास्त्रों का मर्म है कृष्ण भक्ति, और कृष्ण भक्ति के लिए जाति, हमारी पढ़ाई, हमारा पैसा ये आधार नहीं है। लेकिन एक साथ साथ एक और बात समझने की यह है, जैसे भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्म को छोड़ दो। तो इसका अर्थ ये नहीं है भगवान कहते हैं कि अधर्म करो। तात्पर्य यह है धर्म का अनुशीलन होना अच्छा है, वो जरूरी है, लेकिन धर्म अपने आप में लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। धर्म का अनुशीलन भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण उपस्थित करने के लिए होना चाहिए। तो समाज के अंदर हमेशा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये रहेंगे, लेकिन वो अपने कार्यों से भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करें और वास्तव में ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण के गुण उत्पन्न करें। जिनके अंदर ब्राह्मण के गुण है वो ब्राह्मण, जिनके अंदर क्षत्रिय गुण है वो क्षत्रिय, जिनके अंदर वैश्य गुण है वो वैश्य, और जिनके अंदर शूद्र गुण है वो शूद्र, और सभी चारों के चारों वर्ण के लोग स्वे स्वे कर्मण्य विरता संसिद्धिं लभते नरः, अपने अपने कर्मों में, अपने अपने वर्ण में रह करके अपने वर्ण के कार्यों को भगवान को अर्पित करके वो सभी लोग शुद्ध भक्त होते हैं। ये चीज की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो हम भक्तिदान सरस्वती महाराज के अनुयायी हैं, इस चीज को स्थापित कर रहे हैं। तो ये जो शिक्षा है शास्त्रों की, ये भक्तिदान सरस्वती महाराज का विदेश विशेष प्राधान्य है वर्तमान समय में, उन्होंने हमको दिया। तो कृपया आप सभी लोग भक्तिदान सरस्वती महाराज के इन शिक्षाओं को, यानी कि शास्त्र की शिक्षाओं को, जो बार बार धूमिल आती हैं, इसलिए आचार्य आते हैं बार बार उसको स्पष्ट करने के लिए। ये हमेशा से रहा है, हमेशा से हम शास्त्र को तोड़ते मरोड़ते हैं, हर चीज़ को हम तोड़ते मरोड़ते हैं। इसलिए टाइम टाइम, समय समय पर भगवान खुद या तो अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं जो बार बार शुद्ध सिद्धांतों को वापस स्थापित करते हैं, फिर दो मिल जाते हैं, फिर स्थापित करते हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, भगवान कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। और भगवान के भक्त भी भगवान भेजते हैं, तो भक्तिदास सरस्वती महाराज भी उसी प्रकार से ये धर्म की जो ग्लानि कि जातिवाद के रूप में धर्म को मान लेना, वर्णाश्रम का विकृत रूप आसुरी वर्णाश्रम, जिसका उद्देश्य अपने को सुपीरियर घोषित करना और अन्य लोगों को शोषित करना और देह के स्तर पे अपने को श्रेष्ठ मानना या देहात्म बुद्धि में होना, उसको हटाने के लिए, इस आसुरी वर्णाश्रम को हटाने के लिए, और दैव वर्णाश्रम यानी वास्तविक वर्णाश्रम यानी कि वो वर्णाश्रम जो आत्मा का धर्म कृष्ण भक्ति है उसको स्थापित करने के लिए होता है, उसको स्थापित करने के लिए भक्तिदास सरस्वती महाराज का एक विशेष प्राधान्य। और दूसरा प्राधान्य उनका था शुद्ध नाम, नाम अपराध और शुद्ध नाम में अंतर स्थापित करना, वो एक और बड़ा विषय है, वो आज हम नहीं ले पाएंगे, कभी और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसके साथ यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। इस विषय में यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस,
आपने कहा था कि शंकराचार्य जी ने बोला था कि हमें परम ब्रह्म में लीन होना है, ऐसा उन्होंने संदेश दिया था, तो सर ये परम ब्रह्म में लीन होना और श्री कृष्ण की भक्ति करना, इन दोनों में क्या फर्क है?
निराकार ब्रह्म आप परम सत्य तीन स्तर पे समझा जा सकता है परम सत्य को, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, श्रीमद् भागवत में बताया गया है, भगवद्गीता में भगवान बताते हैं 12वें अध्याय के अंदर। आध्यात्मिक जगत में निर्विशेष यानी कि जिसमें कोई विशेषता नहीं है, जिसमें कोई गुण नहीं है, निराकार आकार नहीं है, एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वैकुंठ जगत में इस प्रकार एक सर्वव्यापी एक ऐसा प्रकाश है, दिव्य प्रकाश, तो ये परम स्थिति है, ये परम ब्रह्म, ये ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब भौतिक से परे, ये परम सत्ता की एक स्तर है। फिर एक और इसके ऊपर परम सत्य स्थापित होते हैं, परम सत्य अभिव्यक्त होते हैं परमात्मा के रूप में, जो कण कण में जिस चतुर्भुज विष्णु के रूप में परम सत्य रहते हैं, जिनको परमात्मा कहते हैं, वो परम सत्ता की दूसरी अभिव्यक्ति है। और परम सत्ता की पूर्ण अभिव्यक्ति है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, यानी पुरुष उत्तम जो एक परफेक्ट सुप्रीम पर्सन पूर्ण पुरुष के रूप में अलग अलग वैकुंठ लोकों के अंदर कृष्ण और उनके स्वांश विस्तार अलग अलग विष्णु मूर्ति के रूप में राम वराह इत्यादि के रूप में भगवान रहते हैं, जहाँ जिस रूप में भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ में लीला करते हैं, प्रेम भक्ति में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, वो परम सत्ता की पूर्ण अभिव्यक्ति है, कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो निराकार ब्रह्म ज्योति परम सत्ता की एक अंडरस्टैंडिंग, जैसे सूर्य को हम समझ सकते हैं सूर्य के प्रकाश के रूप में, सूर्य ग्रह के रूप में और सूर्य देव के रूप में, हालांकि ये तीनों सूर्य को ही इंगित कर रहे हैं लेकिन इन तीनों का स्तर अलग अलग है। सूर्य प्रकाश सूरज से ही निकला है इसलिए वो सूरज से अभिन्न है, लेकिन वो सूरज ग्रह नहीं है, वो सूरज देव नहीं है, वो केवल एक प्रकाश है। तो उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति में लीन होना, वो जिनको परम सत्ता का भगवान, जिनके साथ हम नित्य रूप से लीला विलास कर सकते हैं, जिनके हम सेवा कर सकते हैं नित्य रूप से, जिनको वो जानकारी नहीं है, जिनकी जानकारी केवल यहां तक सीमित है कि परम सत्य है एक निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति जिसमें हम लीन हो जाएंगे, यानी जन्म मृत्यु नहीं होगा, केवल उसमें लीन होके इस भौतिक संसार क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे, जहाँ पर केवल ये अंडरस्टैंडिंग होती है, और उसके लिए एक योग साधना है, एक ज्ञान विधि है, उसको पूरा करके वो उस निराकार ब्रह्म में लीन हो सकते हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति का मतलब है जहाँ पर ये समझ है और उस स्तर तक पहुँचना है कि हम अपनी विशुद्ध इंद्रियों से, भगवान जिनकी विशुद्ध इंद्रियाँ हैं उनकी नित्य रूप से सेवा करते हैं। लीन होने में कोई सेवा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रह गए, वहाँ पर आत्मा का कोई स्वरूप विकसित नहीं है, केवल एक कण के रूप में है, उसकी इंद्रियाँ नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं है, आध्यात्मिक हाथ पैर विकसित नहीं है, इसलिए वहाँ कोई सेवा नहीं होती है, वहाँ कोई क्रिया नहीं है, आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, वहाँ केवल एक कॉन्शियसनेस है, दैट्स ऑल। वो है निराकार ब्रह्म में लीन होना। लेकिन भक्ति का अर्थ है कि आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक है, जहाँ पर भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ, अनगिनत भक्तों के साथ में निवास करते हैं और वहाँ पर अपने भक्तों के साथ अलग अलग प्रकार की क्रीड़ाएँ करते हैं, प्रेम व्यवहार करते हैं। उन क्रीड़ाओं में भगवान की सहायता करना, उनकी सेवा करना, ये भक्ति कहलाती है। तो ये अंतर है। और कोई प्रश्न जी?
चैतन्य महाप्रभु जी के बात करिए, मान्यताएं एकदम भूमि कैसे हुई, क्या रहा होगा?
जैसे कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि समय का अपना प्रभाव होता है। हमेशा से हम देखते आए हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सभी समय की अपनी अलग अलग गुण रहते हैं। सतयुग में सभी परमहंस थे, त्रेता युग के आते ही द्वेष शुरू हो गया, तो ये समय का प्रभाव है, समय के प्रभाव से चीज़ें बिगड़ती हैं, और कलयुग है तो उसमें विशेष रूप से बिगड़ती हैं। और हमारी हम सब जो जीव यहाँ इस भौतिक जगत में हैं, हम सब भगवान का विद्रोह करके आए हैं, इसलिए भगवान की सेवा करने के सीधे रास्ते पे चलने से हमेशा हमारी टेंडेंसी रहती है भटकने की, इंद्रिय भोग ढूंढने की। तो हर चीज़ में हम अपना इंद्रिय भोग ढूंढते हैं, इसलिए हम चीज़ों को विकृत कर देते हैं। इसे चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद भी, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, इसलिए उनके प्रभाव से वो सब वातावरण हट गया, लेकिन फिर से जब चैतन्य महाप्रभु चले गए तो फिर से वो धूमिल होने लगा। फिर एक शक्तिशाली आचार्य आते हैं, फिर उसको हटाते हैं, फिर शक्तिशाली आचार्य जाने के बाद फिर से वो धूमिल जाती है। ऐसा हमेशा से होता रहा है, ये कारण है। और कोई
प्रभु, जैसा कि आपने बताया कि भक्ति अक्सर कर्म और ज्ञान से आवृत हो जाती है, कर्म मीमांसा और मायावाद का उदाहरण दिया है, तो कई बार ऐसा हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जो भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं तो उनका कहना है कि जो जो कि भौतिक प्रलोभन देकर के लोगों को आकर्षित करती हैं, उनका कहना है कि हम लोगों का पूर्ण विकास देखना चाहते हैं, क्योंकि लोग पूर्ण रूप से विकसित हों, उनका जीवन अच्छी तरीके से चले। तो इसमें सवाल ये उठता है कि जो भी आध्यात्मिक संस्था है उसका लोगों के भौतिक जीवन शैली या भौतिक कार्यकलापों को सुधारने के लिए और उनके जीवन को अच्छे बनाने के लिए आध्यात्मिक संस्थाओं का कितना योगदान उस कार्य के लिए रहेगा?
तो भौतिक जगत में जो आयोजन है, भौतिक आवश्यकताएं जो हमारी हैं, वो अंततः हैं इस भौतिक जगत में इसलिए रहने के लिए, शरीर का इसलिए देखरेख करने के लिए, जिससे कि हम अंततः इस शरीर के बंधन से बाहर निकल सकें, ना कि इसको पोषण करने के लिए। जैसे बांस होता है, बांस के घर्षण से अग्नि निकलती है और वो अग्नि उस बांस को भस्म कर देती है, तो उसी प्रकार से भौतिक कार्य या भौतिक जो भी हमारे कार्य हैं वो इसलिए हैं कि जिससे हम उसका उपयोग करके खुद उन्हीं कार्यों को भस्म कर दें, ना कि उन कार्यों को करते रहें और उसी में लिप्त हो जाएं। तो अगर तो शास्त्रों में भी वर्णाश्रम पूरा वो भौतिक स्थिति के लिए ही है, भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही है वर्णाश्रम प्राइमरीली, लेकिन इस तरीके से जिससे कि इन न्यूनतम जो शरीर की आवश्यकताएं उसको पूरा कर पाएं और जो उसके अंदर निहित भक्ति है उससे अंततः ये अटैचमेंट जो है इस भौतिक जगत से उससे हम बाहर निकल पाए। तो यदि इस चेतना से भौतिक आवश्यकताओं को लिया जाएगा तो वो आध्यात्मिकता के अंतर्गत आएंगी, लेकिन अगर इस डिस्टिंक्शन को क्लियरली नहीं समझा जाएगा तो हम भौतिकतावाद को आध्यात्मिकता के नाम पर लेंगे। हम लेंगे कि भगवान का नाम इसलिए लेना है जिससे हमारी भौतिक प्रगति हो, हमें भक्ति से करनी है जिससे कि भगवान हम खुशी हों, जैसे हम मंदिर से जाएंगे भगवान हम आपकी बहुत सेवा करेंगे आप हमें अच्छा रखना, तो वो क्या हुआ, भक्ति या अध्यात्म को हमने अपने ही इस भौतिक जगत में रहने के लिए एक उपादान बना लिया, एक मेथड बना लिया, टूल्स बना लिया। तो इसलिए ये डिस्टिंक्शन हमेशा क्लियर रहना चाहिए। इसीलिए केवल शुद्ध रूप में वर्णाश्रम के द्वारा ही भक्ति और भौतिक आवश्यकताओं का सामंजस्य हो सकता है। अगर हम शुद्ध वर्णाश्रम के बिना उसे करने जाएंगे तो हम वो भौतिक आवश्यकताओं के या भौतिक अटैचमेंट से लिप्त होने का खतरा उसमें हमेशा बना रहेगा। इसीलिए क्लियरली सबसे पहले तो अध्यात्म क्या है और भौतिक क्या है उसको डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है पहले तो, नहीं तो क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति है, जो नवागंतुक है, वो तो हमेशा से भौतिकतावादी विचारधारा से ही आच्छादित है। इसलिए जब तक आप उसे पहले अध्यात्म और भौतिक में अंतर नहीं बताएंगे तब तक वो अध्यात्म को भौतिक ही समझेगा। ये सबसे पहली टीचिंग है, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, हम शय नहीं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं। इस भौतिक जगत से अंततः हमारा कोई लेना देना नहीं है, पहले इस बात को अच्छे समझना पड़ेगा, फिर ठीक है अभी हमें जरूरत है, शरीर है तो कुछ करना है इस उद्देश्य से कि हम भगवान की भक्ति में इस शरीर को लगा सकें, उस परिपेक्ष में हमें समझना है भौतिक आवश्यकताओं को, नहीं तो टेंडेंसी हमेशा यही है कि हम अध्यात्म को भौतिक बनाए थे। इसलिए नवागंतुक के लिए सबसे पहले जरूरी है उनको समझाना भेद अध्यात्म और भौतिक में क्या भेद है। हरे कृष्ण। ओके माता जी,
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण
प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम मानवों में भी चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, वैसे क्या पशु पक्षी में भी होते होंगे?
तो ये जो वर्ण एक्चुअली चार नहीं पांच हैं, स्त्री एक और वर्ण है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये मनुष्य समाज के लिए भगवान ने दी है, क्योंकि मनुष्य समाज के अंदर उनकी विवेक बुद्धि इतनी विकसित है कि वो हरि सेवा कर सकते हैं। वर्णाश्रम धर्म का क्या हेतु है? हरि सेवा। तो जानवरों के अंदर तो विवेक बुद्धि नहीं है हरि को समझने की, आत्मा को समझने की, इसलिए वहां पर वर्णाश्रम नहीं है। यस, कौन सा मार्ग पहला बताया?
ज्ञान मार्ग।
ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग। ध्यान मार्ग का टेक्निकल नाम है अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारण समाधि, तो उसमें ध्यान आता है, वो अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। तो अष्टांग योग भगवद गीता में छठे अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं। जब भगवान अर्जुन को ये बता रहे थे अष्टांग योग यानी कि ध्यान योग, तो उस समय अर्जुन इसको सुनकर के भगवान से बोलते हैं कि आप जो ये अष्टांग योग पद्धति बता रहे हैं कृष्ण, मेरे लिए इस पद्धति को पालन करके आध्यात्मिक प्रगति करना असंभव लगता है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़म, वो कहते हैं क्योंकि इस पद्धति से जो आप बता रहे हैं मैकेनिकल प्रोसेस, एक योगा आसना से मन को केंद्रित स्थिर करना, वो मेरे लिए असंभव है। तो जब 5000 साल पहले इतने शुद्ध वातावरण आज के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं, अर्जुन जैसे एक वैदिक संस्कृति को पालन करने वाले शुद्ध व्यक्ति के लिए जब वो चीज़ असंभव रही होगी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, तो आज हम लोग जो वर्तमान समय में रह रहे हैं तो उनके लिए क्या ये पॉसिबल होगी? इट्स नॉट पॉसिबल। केवल दिखावा कर सकते हैं। आजकल ध्यान योग हम किस लिए करते हैं? ध्यान योग नहीं रह गया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक पार्ट बन गया है। स्ट्रेस रिलीव करने के लिए ध्यान करते हैं जिससे हम स्ट्रेस को रिलीव करके दोबारा से इस भौतिक जगत को खूब अच्छे से भोग कर सकें। ध्यान योग इस भौतिक जगत के भोग से निकलने के लिए है, लेकिन आज की मेडिटेशन क्लासेस और हमको एम्पावर करने के लिए, इस जगत का भोग करने के लिए, तो वो दिखावा है।
हरे कृष्ण, चार वर्ण हैं जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो इस फॉर्म में जो अधिक से अधिक हम फोकस कर रहे हैं, दैट इज टू डेवलप ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, ब्राह्मण की ओर। ऐसा लग रहा है कि हमारा सारा फोकस जो है वो सब लोगों को ब्राह्मण बनाना है, लेकिन समाज के लिए या जैसे चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं थी वो शायद बहुत अधिक क्लास तक प्रभावी नहीं थी। इसका ये भी शायद कारण हो सकता है कि कोई क्षत्रिय समाज या जो इस हमारी जो सोच है या हमारा जो ये विचारधारा है इसको प्रभावी ढंग से इसका अगर कोई वो कर सकता है, रक्षण कर सकता है, तो उसके लिए हमें क्षत्रिय समाज भी डेवलप करना चाहिए। तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स है वो कैसे डेवलप होगी, क्योंकि सभी लोग तो ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि हर मनुष्य जो है उसकी अपनी अपनी क्वालिटीज है, वर्ण है उसका अपना अपना, जाति से नहीं, जन्म से नहीं, लेकिन स्वभाव से भी है, इस तरह के कैसे।
इसलिए वर्णाश्रम का मतलब नहीं है कि सबको ब्राह्मण बनना है, वर्णाश्रम का मतलब नहीं है सबको ब्राह्मण बनना है। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण है, एक वर्ण नहीं है ब्राह्मण, चार वर्ण है, क्योंकि हमेशा से इस प्रकार के चार लोग रहेंगे। वर्णाश्रम संस्कृति को ब्राह्मणिकल संस्कृति कहा जाता है क्योंकि वो ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो परम सत्ता को जानता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। जिस संस्कृति का केंद्र भगवान को जानना होता है उसको ब्राह्मणिकल संस्कृति कहते हैं, उसको ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं। ब्राह्मण संस्कृति का अर्थ नहीं है सबको सब ब्राह्मण होने चाहिए, ब्राह्मण संस्कृति का अर्थ है जिस संस्कृति का केंद्र भगवान को समझना है। इसलिए भगवान भगवद्गीता में क्या 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 बताए, स्वे स्वे कर्मण्यभिरता, चाहे कोई ब्राह्मण है चाहे कोई शूद्र है, अपने इन कर्मों से आप कैसे पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, वो वर्णाश्रम का हेतु है। हाँ, तो ब्राह्मण संस्कृति के अंदर चार वर्ण जो हैं वैदिक वर्णाश्रम के अंतर्गत, ये चारों वर्ण के लोगों को सत्वगुण डेवलप करना होता है। भगवान तो अर्जुन को क्षत्रिय होने के लिए, क्षत्रिय धर्म पालन करने के लिए बोले, भगवान अर्जुन को नहीं बोले कि तुम ब्राह्मण बनो, क्योंकि हमारा जो भी प्रारब्ध के अनुसार हमारे गुण हैं वो जीवन में रहते हैं। भक्ति करने पर हालांकि सैद्धांतिक रूप से वो समाप्त होते हैं भगवान की शरणागति लेने से, लेकिन क्योंकि समाज में चार के चार प्रकार के लोग चाहिए, ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए, शुद्ध भी चाहिए, इसीलिए वो गुण सभी के अंदर रहते हैं। इसीलिए उन कार्यों को करते हुए उन कार्यों के अंतर्गत हमें सत्वगुण लाना होता है। जैसे कि कोई भी अपना वर्ण का कार्य हम जो कर रहे हैं, यदि उसके फल की आकांक्षा से हम कर रहे हैं तो वो रजोगुण को बढ़ाता है। यदि अपने वर्ण के कार्य को हम फल की आकांक्षा के बिना निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो वो सत्वगुण को बढ़ाता है। तो इस तरह से चाहे कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है, उसको निष्काम करने की संस्तुति की गई है जिससे सत्वगुण बढ़े, और सत्वगुण जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही हम धर्म का पालन कर पाएंगे, और धर्म का पालन करने से ज्ञान अर्जित होता है, और ज्ञान को प्राप्त ज्ञान करने से मुक्ति। हाँ, तो इस प्रकार से जो वर्णाश्रम सिस्टम है वो सबको मदद करने के लिए है कि सब धीरे धीरे सत्वगुण में आए। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक टाइम पर किसी व्यक्ति को उठा करके उसको कोई शुद्ध है उसको ब्राह्मण बनाना है। जो भी आपका जन्म से पूर्व कर्म फल के अनुसार जो भी आपके गुण हैं, बर्थ से नहीं, बर्थ उसमें एक फैक्टर हो सकता है, पर गुण से जो भी हैं वो उनको आप भगवान की सेवा में नियोजित करें। तो यानी कि ये उद्देश्य नहीं है कि हमें सबको ब्राह्मण बनाना है, पर सबको ब्राह्मणत्व की तरफ बढ़ना है। ये कई कई जन्मों की बात होती है, जो ये वैदिक सिस्टम है इसमें कई कई जन्म में व्यक्ति धीरे धीरे उत्तरोत्तर ब्राह्मण बनते हैं। एक जन्म की बात नहीं हो रही है कि एक ही समय में किसी शूद्र को हम कहें अभी आप ब्राह्मण बन जाओ, इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि वो एक जन्म की बात नहीं, कई कई जन्मों की बात हो रही है। ये है ग्रेजुअल सिस्टम। लेकिन जो डायरेक्ट प्रोसेस है, जो आजकल जो प्रोसेस शरणागति का जो प्रोसेस है उसके अंदर मुख्य प्रगति का मार्ग है शरणागति, नवविधा भक्ति। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कार्य हम करते हैं क्योंकि समाज के पालन के लिए वो जरूरी हैं और वो अनुकूल वातावरण उपस्थित करते हैं भक्ति संपन्न करने के लिए। लेकिन मुख्य आध्यात्मिक प्रगति होगी अभी ब्राह्मण बनने से नहीं, ब्राह्मण बनना लक्ष्य नहीं है, क्योंकि प्रगति, मुख्य प्रगति कलयुग में होगी हरिनाम से, नवविधा भक्ति करने से। लेकिन अभी हम हरिनाम कर रहे हैं तो भी समाज में जो हमारी सामाजिक आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए फिर भी ये चार वर्ण के लोग चाहिए। इसलिए जो भी हमारा गुण है उसके अनुसार हम अपना कार्य करें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उसमें रहते हुए भक्ति करें, ये निचोड़ है। ऐसा नहीं है कि किसी को ब्राह्मण बनाने का प्रयास किया, बल्कि यही चैतन्य महापुरुषा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी हैं हमें अपने उन कार्यों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। प्रताप रुद्र एक क्षत्रिय थे चैतन्य महाप्रभु के समय में, भगवान के बड़े महान भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु नहीं कहा कि आप क्षत्रिय नहीं, आप तो ब्राह्मण बन जाओ, नहीं, वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय होकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण
जी,
जो सिद्धांत सुंदरी ठाकुर का आविर्भाव दिवस है
जी, गुरु कहा था क्योंकि उन्होंने सिंह की तरह से सभी जो भ्रांत धारणाएं हैं प्रचलित समाज के अंदर उनको उन्होंने खंडित किया। जैसे मैंने आपको बताया उनकी उनके प्राण लेने के लिए प्रयास किया गया था, क्योंकि उन्होंने ये स्थापित करने करा कि जन्म से जातिगत जाति पात कोटाया, इसलिए उनको मारने के भी प्रयास किए गए। तो वो जो भी उनके वचन थे उनको बोलने में वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, सत्य का प्रचार करने में वो कभी समझौता नहीं करते थे, इसलिए वो सिंह गुरु थे। तो उन्होंने बताया कि गुरु साधु का कर्तव्य है कि वो सत्य को यथारूप बताए, चाहे भले ही लोगों को बुरा लगे, गुरु का यही कार्य है, साधु का यही कार्य है कि जो भी भ्रांत धारणा है उसको हटाए। और जब हमारे हृदय में भ्रांत धारणा होती है तो हमको कष्ट होता ही है सुनने में सही चीज़ को, लेकिन यही साधु का कर्तव्य है। तो इसलिए साधु को कैसा होना चाहिए ये भी हमें उनके जीवन से सीखना है। साधु का कर्तव्य नहीं है कि ज़्यादा लोग इकट्ठा हों मेरा प्रवचन सुनने के लिए, मेरे ज़्यादा अनुयायी बने, इसलिए लोग जो सुनना चाहते हैं मैं वैसा लोगों को सुनाऊँ, अध्यात्म के नाम पर धर्म के नाम पर मैं लोगों को एंटरटेन करूँ, वो साधु का काम नहीं है। साधु का काम है जो भी भगवान का वचन है, शास्त्रों का वचन है, उसे यथारूप कहा जाए, तभी लोगों का उद्धार होगा। तो इसलिए उनको लाइन गुरु कहा जाता था। यहाँ पर समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भक्तिदान सरस्वती महाराज प्रभुपाद की जय।